मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स के बारे में। तो मैंने काफ़ी दिन बाद एक टेक वीडियो देखा गी की रंजित सर का आज, तो सर का वीडियो देख के मुझे लगा कि मतलब आईक्यू न्यू 7 का रिव्यू था वो। तो आईक्यू न्यू 7 जो कि अभी कुछ 30 to 35K के बीच का एक फ़ोन है, उस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, मिड रेंजर फ़ोन है। तो फ्लैगशिप मिड रेंजर ही कहेंगे उसको। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है आईक्यू, जो भी लॉन्च करता है मेनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। लेकिन तो हम कुछ थोड़ा रिवाइंड बैक करेंगे पहले कि अभी टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अभी मतलब जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे ग्रेजुअल शिफ्ट आया, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर हम कैशुअली जस्ट बात करते हैं। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि जब 2-3 साल पहले शायद रेडमी नोट 7 प्रो एंड रियलमी 3 प्रो एट द सेम टाइम दोनों लॉन्च हुए थे। 48 मेगापिक्सल था मेन हाइप वाला जो फैक्टर था रेडमी नोट 7 प्रो का। रियलमी 3 प्रो में एक बैलेंस्ड ओवरऑल अच्छा एक स्मार्टफोन, बहुत डिसेंट स्मार्टफोन रियलमी ने प्रोवाइड किया था 14K के अंडर में। तो सिंस देन ये वाला मार्केट जो है ये हिट हुआ था, जिसमें जहाँ यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, फिर ये मार्केट टारगेट करने लगे। क्योंकि जो 10K to 15K वाला सेगमेंट होता है ये सबसे स्वीट स्पॉट होता है इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। क्योंकि जो नॉर्मल एक इंडियन कंज्यूमर होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना ही स्पेंड करना चाहेगा स्मार्टफोन में, इसी गैप के अराउंड 10K to 15K के अराउंड। क्योंकि वो एक मतलब भाई उससे ज़्यादा एक स्मार्टफोन पर क्यों स्पेंड करेंगे हम। तो यही होता है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, तो ये तो 15K 10K ही हिट करेंगे मोस्टली, 20K तक चलेगा ज़्यादा। तो ये वाला मार्केट काफ़ी हॉट हो गया था। तो जैसे मार्केट हॉट हुआ रियलमी गेमिंग की मार्केट में, इसी ड्यूरिंग रियलमी ने अपनी पोजिशन बनाई काफ़ी लगातार क्वार्टर्स में। इसने काफ़ी अच्छे फ़ोन्स देने शुरू किए रियलमी के, जो ये 3 प्रो 4 तो नहीं आया था, 5 आया था, तो 5, 6 ये सब जो चल रहा था ओवरऑल ये वाली सीरीज़ ये काफ़ी हिट हो रही थी। जैसे रियलमी 6 प्रो जो 6 सीरीज़ आई थी उसके कॉम्पिटिशन में जो रेडमी की तरफ से जो फ़ोन रिलीज़ किया गया था वो शायद से था पोको का भी था एक रियलमी, तब तक पोको भी एंट्री कर लिया था ऐसे सब ब्रांड करके, पहले एंट्री किया फिर इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गया था पोको। तो पोको को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि पोको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर देंगे, कि भाई रेडमी तो ओवरऑल हर चीज़ में टारगेट करता है, बैलेंस्ड स्मार्टफोन हो गया। लेकिन जो पोको हो गया पोको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो इसलिए पोको को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो पोको ऐसे सब ब्रांड पे चल रहा था, पोको का हमारा जो फर्स्ट फ़ोन दिखा था शायद पोको एक्स टू दिखा था जो हिट किया था अपना 25 to 30K वाला सेगमेंट, जिसमें काफ़ी अच्छा उसने मतलब आउटपुट दिया था, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था वो पोको एक्स टू, आइकॉनिक प्रोडक्ट था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था मोस्टली। तो वहाँ से पोको की स्टार्टिंग हुई। फिर लास्ट ईयर आई गेस एक पोको का X3 भी आया था, जिसमें 8 सीरीज़ का प्रोसेसर अंडर 20K, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। ऑल तो उसमें बाकी जो स्पेक्स थे अच्छे थे, लेकिन कुछ स्पेक्स और जो ऑप्टिमाइजेशन थी उसमें किधर कहीं उन्होंने कॉस्ट कटिंग की थी ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि 8 सीरीज़ का प्रोसेसर 820K के अंडर में दिया है, तो कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा था। फिर आया आईक्यू। इन बिटवीन आईक्यू ने पोजिशन बनाई, पहले आईक्यू मिड रेंज ही को हिट किया था, पहले मिड रेंज मार्केट को हिट किया है पोको के कंपटीशन में, पोको का कॉम्पिटिटर बन के मिड रेंज मार्केट हिट किया था। एंड ड्यूरिंग दिस ऑल एक रेडमी का के सीरीज़ भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन के सीरीज़ फिर डिसकंटिन्यू हो गई। के सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का मुझे तो ये लगता है रीज़न कि पोको को मार्केट में अगर मेंटेन करना है तो रेडमी अगर ख़ुद कंपटीशन देगा पोको को फिर तो क्लैश हो जाएगा ना, मतलब सेम ही कंपनी है पैरेंट कंपनी, तो प्रॉफिट में तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्या, मतलब इसका ले रहे हैं उसका ले रहे हैं। तो फिर क्या किया कि डिसकंटिन्यू कर दिया के सीरीज़ को। तो फिर अब पोको मार्केट को कैप्चर कर रहा था, तो अब रियलमी या फिर आप बोल सकते हो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, जो वीवो ओप्पो ये जो पैरेंट कंपनी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स हम कहते हैं, तो ये वीवो ओप्पो वाले, ओप्पो का तो खैर अलग चल रहा था, एक 30K के ऊपर आपका ओप्पो रेनो सीरीज भी शुरू किए थे, ऐसे कैमरा में तो लोग मचा रहे थे। फिर और एक चीज़ के जो ओप्पो वीवो जो स्टार्टिंग किए थे, जो ऑफलाइन हो गया अपना ऑफलाइन मार्केट को फिट करने के लिए, तो ऑफलाइन मार्केट को पहले टारगेट किए थे ओप्पो वीवो, जिसमें वैल्यू फॉर मनी मैंने नहीं रहता था, बल्कि डिज़ाइन हो गया और कैमरा में ब्यूटी फीचर्स, जो ब्यूटिफिकेशन ये सब, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में वैसे ही जो ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं मोस्टली कंज्यूमर्स उस टाइप के होते हैं। फिर जब ऑनलाइन मार्केट वाइडन अप होना शुरू किया धीरे धीरे, खासकर जब कोविड का सिनेरियो आया तो एक्सप्लोर कर गया था ऑनलाइन मार्केट अपना, तो उस ड्यूरिंग में काफ़ी पोको आईक्यू ये सब ये सारे ब्रांड्स काफ़ी ब्लो अप हुए थे। तो इसी ड्यूरिंग में आपका आईक्यू का आया, आईक्यू की सीरीज फिर काफ़ी अच्छा करने लगी। आईक्यू का जैसे जो नंबर सीरीज जो है, जो नंबर एक नंबर वाली सीरीज जो है आईक्यू 3, आईक्यू 5, आईक्यू नियो ऐसे कुछ कुछ तो आया था, तो ये सारे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगे मार्केट में। तो ये मिड रेंज मार्केट को हिट कर रहे थे पहले आईक्यू वाले, तो आईक्यू वालों ने आईक्यू लगा के मिड रेंज मार्केट हिट किया। वहाँ पे फिर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अगर मतलब इनका काफ़ी अच्छा फैन बेस भी बनने लगा, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे फिर नीचे भी आना शुरू किया कि 20-25K में रिलीज़ करते हैं, फिर 20K के नीचे हो गया, 15K के नीचे कभी कभी ऑफ़र में भी दिख जाएंगे, बाकी 15K के नीचे तो उतना दिखते नहीं है, लेकिन ऑफ़र होगा तो कहीं दिख जाएंगे। वैसे 15K के अंडर अभी उतना स्ट्रॉन्गली हिट नहीं किया है मार्केट को आईक्यू ने, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो ऑफकोर्स 15K के नीचे क्या किस लेवल का वो लोग परफॉर्मेंस दे पाएंगे, या फिर कैमरा भी सब एक ब्रांड की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है ना। जैसे वन प्लस ने किया, वन प्लस पहले फ्लैगशिप रिलीज़ कर रहा था, तो एक आइडेंटिटी हो गई, वन प्लस की ब्रांड वैल्यू इतनी हो गई कि कोई वन प्लस अगर पब्लिक में देख लिया तो समझ गया कि अच्छा कॉस्टली फ़ोन है, आईफोन का वो आईफोन बजट फ़ोन नहीं रिलीज़ करता, तो आईफोन दिख गया मतलब कि वो महंगा फ़ोन है। तो यही आइडेंटिटी इस तरीके से वन प्लस फिर नोट रिलीज़ किया, फिर नोट सी वगैरह, तो फिर उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि वन प्लस फिर सारे मार्केट में घुस गया है, और वन प्लस का नीचे वाला जो फ़ोन आता है उसमें जिटरी फीलिंग रहती है, क्योंकि प्रोसेसर उस लेवल का नहीं होता जितना फ्लैगशिप के लेवल का हो गया, तो उससे जिटरीनेस आती है, जो डिवाइस में लैग होता है उसकी वजह से, फिर लोग क्या बोलते हैं कि वन प्लस का फ़ोन ये, लोग वो थोड़े ना देखेंगे कि ये 15K के अंडर वाला फ़ोन है, तो नहीं, वन प्लस पे डायरेक्ट ब्लेम जाएगा, कुछ अगर है तो वन प्लस पे ब्लेम जा रहा है। तो फिर वहाँ से उसकी आइडेंटिटी ख़त्म होने लगी, फिर धीरे 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 वन प्लस को तो इन्होंने किल ही कर दिया, कि उनके जो पीट लॉ जो CEO थे वन प्लस के, उन्होंने भी फिर रिज़ाइन करके अपना नया ब्रांड शुरू कर दिया नथिंग नाम का। फिर नथिंग के बारे में तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे, नथिंग के बारे में मुझे ज़्यादा पता भी नहीं कि वो ब्रांड क्या है कैसा है, बस एक इंटरव्यू देखा था तो पीट लॉ ने बोला था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फंकी सा ब्रांड बनाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ वैल्यू फॉर मनी दे आर ट्राइंग टू बी फंकी, और उनकी टारगेट ऑडियंस एंड काफ़ी डिफरेंट होगी, टेक एंथुसियास्ट टाइप वो एक कैटेगरी होगी उनकी टारगेट ऑडियंस। तो आईक्यू ने धीरे धीरे सारे मोस्टली जो हॉट मार्केट्स हैं वो हिट करना शुरू किया, तो आज के टाइम पे तो आईक्यू का जो अगर हम देखेंगे तो हर एक प्राइस सेगमेंट पे आईक्यू का फ़ोन आपको मिलेगा, 15K के नीचे भी मिल सकता है बट कम है, इंस्टेंट उसके ऊपर आप जाओगे तो फिर हर एक प्राइस सेगमेंट में आपको आईक्यू का मिल रहा है, और मिल रहा है सिर्फ नहीं काफ़ी अच्छा डिवाइस भी रहता है उनका, वैल्यू फॉर मनी हो गया, कैमरा हो गया आपका, परफॉर्मेंस हो गया, सब बैलेंस रहता है, OS पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, फन टच OS है, वीवो का जो कोर OS होता है या फिर OS नहीं थीम कहेंगे उसको, वही थीम यूज़ किया गया है लगभग, फन टच OS है वही थीम है, लेकिन बाकी सब बहुत काफ़ी अच्छा फ़ोन रहता है, मोस्टली आईक्यू के फ़ोन काफ़ी अच्छे होते हैं, डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो फिर धीरे धीरे पोको का जो अभी करंट सिनेरियो है, पोको उतना हॉट नहीं है, रेडमी पोको ये दोनों अभी मार्केट में है बजट के कैटेगरी में, बजट जो सेगमेंट हो गया अपना 15K 20K, या फिर 10 to 15 या फिर 10 to 20 पे आप बोल सकते हो, बट वेरी करते हैं। जैसे 10 to 15 में आप जैसा सिनेरियो देखोगे वो 15 to 20 में नहीं रहेगा, चेंज हो जाता है। डिवाइस के जो स्पेक्स होते हैं सारे काफ़ी कैजुअल शिफ्ट दिखेगा आपको। तो अभी जो मुझे लगता है जो डोमिनेंट है यहाँ पे वो रेडमी अभी डोमिनेंट नहीं फील होता, रियलमी इंस्टेंट ज़्यादा डोमिनेंट फील होता है। अब रियलमी के आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स दिख जाएंगे, यहाँ तक कि एक सेम प्राइस पे, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे ही आपको मल्टीपल डिवाइसेस दिख जाएंगे। तो रियलमी अभी काफ़ी फ़ोन्स डिवाइसेस रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप अगर कहीं जाओगे कुछ फ़ोन लेने हैं इस प्राइस पे या प्राइस पे, सबसे ज़्यादा तो आपको रियलमी के दिखेंगे। सर्च करोगे आप अमेज़ॉन पे जाके, फ्लिपकार्ट कहीं पर, तो रियलमी के ज़्यादा पहले पहले दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रियलमी उतने फ़ोन्स रिलीज़ कर रहा है अभी, काफ़ी फ़ोन्स रिलीज़ कर रहा है। जैसे अभी एक रियलमी का सी सीरीज़ तो है बजट वाली, अब रियलमी का नंबरिंग सीरीज़ ही देख लो, नंबरिंग सीरीज़ में 9, 9 प्रो, फिर 9 और भी कुछ करके 5G बोल के ऐसा कुछ रिलीज किया था। तो एक ही फ़ोन का डिफरेंट वेरिएंट कुछ ट्विकिंग करके रिलीज़ करता जा रहा है, और इनफैक्ट वो रिक्वायरमेंट जिसकी जैसी होती है उसको फुलफ़िल भी कर देता है। मतलब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो मुझे ये चाहिए होगा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो ये चाहिए। लेकिन क्या होता है अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी फ़ोन अच्छा है, अब कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सा लेना है। फिर होता है कि एक ले लिया हम लोग, फिर पता चलता है कि रिग्रेट फीलिंग होता है कि यार वो ले लेते। तो ये है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ोन रिलीज़ करने में आपका फुल मार्केट एक काफ़ी सैचुरेटेड और काफ़ी गार्बेज जैसा लगने लगता है कि आप इतना सारा फ़ोन रिलीज़ कर दिया, अब क्या है, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छा है, और आप मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे जैसे आप फ़ोन ज़्यादा रिलीज़ करोगे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको मेंटेनेंस सबका चेक करना पड़ेगा, जो फिर आपसे होगा नहीं, क्योंकि उतने सारे फ़ोन से सबका R&D सबका सॉफ्टवेयर पे काम करना आपको पॉसिबल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें वो दिखता भी है कि रियलमी का जो अपडेट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट इंश्योर करते हैं, और जनरली कंपनीज 2 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड्रॉयड अपडेट्स में ये करते हैं, गारंटी करते हैं, और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट्स तो खैर हो जाता है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर कंपनियाँ लैक कर जाती हैं। मतलब अपडेट तो पुश करेंगे बट ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट, बग फिक्सेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे फ़ोन्स हैं, इतने सारे हर फ़ोन का जब मास में इतने बल्क में फ़ोन अगर है तो इतने सारे फ़ोन्स का सारे का सॉफ्टवेयर पे एक्चुअल में वर्क करना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सा टास्क हो गया। अब नेक्स्ट फ़ोन जब रिलीज़ करेंगे तो नेक्स्ट फ़ोन पर ना ध्यान देंगे, और जो बजट कैटेगरी है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट उतना उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा। ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो हायर मार्केट होगा ना, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा वर्क होगा। तो अभी ओवरऑल ये सीन चल रहा है मार्केट में, इस वजह से कि अभी जो डोमिनेंट लगते हैं मार्केट में आईक्यू, मतलब आप बोल सकते हो कि ओप्पो, ये वीवो हो गया, वीवो का आईक्यू, और या फिर आप BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल तो है ही डोमिनेंट, वो तो पहले से है, बट आईक्यू के फोन डिवाइसेस जनरली अभी काफ़ी से आ रहे हैं। और एक ब्रांड अभी जो काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से साइलेंट था, अभी रिसेंटली काफ़ी एक्टिवली वो भी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहा है और काफ़ी अच्छे फ़ोन्स ऑफर कर रहा है, मोटोरोला का भी जी सीरीज़ जो है, G40 फ्यूजन ऐसे से करके, तो जी सीरीज़ काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी क्लीन रहता है स्टॉक एंड, और जिनको भी चाहिए होता है मोटोरोला लेते हैं। तो मोटोरोला हो गया आपका, मोटोरोला काफ़ी अभी अच्छा काम कर रहा है, और फिर लावा का भी एक अग्नि कुछ तो करके एक फ़ोन आया था, काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आया था लावा का फ़ोन, स्पेक्स काफ़ी अच्छे उसके और का सारा अच्छा। बस ऐसे ब्रांड्स में, इंडियन ब्रांड्स में होता क्या है कि एक दो फ़ोन से कुछ ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, कंटिन्यूस जो 1 साल 2 साल अगर अच्छे फ़ोन्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गए, फिर ट्रस्ट मेंटेन कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स रिलीज़ करता है फ़ोन, आया था पूरा फुल क्या देशभक्ति वाला पूरा स्लोगन लगा के, बट होता क्या है कि भाई देशभक्ति तो ठीक है आप ऑफ़र करो ना, कॉरपोरेट में या फिर आप जो अगर कुछ ऑफर कर रहे हो तो उस पर जाता है ना कि आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो। एट द एंड तो वही हुआ ना, वही आदमी स्पेंड करेगा ना अपना पैसा, क्योंकि फ़ोन भी कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बदलेंगे। नहीं, एक फ़ोन लिए तो 3 साल फिर वही फ़ोन रहता है, तो 3 साल नहीं तो 1-2 साल तो रहता ही है, सेम फोन फिर चेंज होता है जाके अगर कोई सीरियस दिक्कत हुई तो। तो माइक्रोमैक्स भी एंट्री मारा था, माइक्रोमैक्स ने भी रिलीज़ किया था कुछ फ़ोन। तो माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स का नाम तो याद नहीं करेक्टली, बट यस उसने भी रिलीज़ किया था, उन्होंने रिलीज़ किया था और रिलीज़ करके फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे होगा। और एक बार तो माइक्रोमैक्स कम्प्लीटली सीन से वैनिश भी हो चुका है, तो कैसे ट्रस्ट कर लें इतना जल्दी। तो ऑफकोर्स माइक्रोमैक्स का तो ये चलता रहेगा, अब लावा भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है फिर तो नहीं आए भाई बटर मार्केट में। अगर आ ही रहे हो तो आप करो, अच्छा कर रहे हो अभी, ये मेंटेन करते रहो, ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो गया फिर तो आप ही का फोन लेंगे। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आप इंडियन ब्रांड हो तो आप ही का लेना चाहेंगे, जो एट द एंड जो आपको वैल्यू फॉर मनी देगा उसका फोन परचेस, उसके फोन परचेस होंगे, उसका प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपके इमोशंस उतना नहीं आते, कुछ दिन चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे इमोशंस। तो अभी मार्केट तो आईक्यू ही डोमिनेट कर रहा है लगता है, अब एक्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि मोटोरोला भी अच्छा कर रहा है बाकी, बट एक क्वार्टर का जब अगर हम लोग पास्ट कुछ क्वार्टर्स का अगर देखेंगे स्टैट्स तो आईक्यू काफ़ी अच्छा कर रहा है। और बात यह है कि सिर्फ आईक्यू का नहीं देखते, यहाँ पे वीवो उसका पेरेंट ब्रांड है, तो वीवो भी काफ़ी अच्छा सेल्स कर रहा है अभी। वीवो के डिज़ाइन, कैमरा ये सब काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मतलब कैमरा के डिपार्टमेंट में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, और डिज़ाइन में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता है वीवो, और काफ़ी जिसके आउटपुट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बट पॉइंट ये है कि काफ़ी सालों से अभी कुछ रेवोल्यूशनरी कोई चीज़ हो नहीं रही है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, जैसे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आया, फुल स्क्रीन नॉच वाला फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह आई, ऐसी चीज़ें फिंगरप्रिंट वगैरह, तो ये सब चीज़ें आई। लेकिन एक पॉइंट आया कि अभी के अब क्या हो सकता है, जितना हो सकता था ट्विक कर लिए स्मार्टफोन में, जिस लेवल तक हो सकता था उस लेवल तक पूरा एक्सप्लोर कर लिए मार्केट को नहीं स्मार्टफोन को। तो मतलब ये बदल दिया, वो बदल दिया, डिज़ाइन बदल दिया, थोड़ा सा ऊपर को नॉच थोड़ा छोटा कर दिया, नीचे थोड़ा बेजल्स कम कर दिया साइड में, ये सब तो ठीक है, मतलब चलता रहेगा। थोड़ा सा डिज़ाइन में कलर टिंट लेके आ गया, बट एक्जैक्टली कुछ रेवोल्यूशनरी या फिर कुछ अलग सा अभी तक दिख नहीं रहा, सैचुरेट हो गया, वही हुई कि मतलब इतना बदल दिया कि अब जो बदल सकते हैं तो कुछ डिज़ाइन बदल दो आप एंटायरली, मतलब जो शेप है हम लोग बॉक्सी शेप हर बार देखते आ रहे हैं उसमें आप कुछ ट्विक कर दो, या फिर ऐसा कुछ करो कि मतलब जैसे एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को जो आईफोन इंट्रोड्यूस किया शुरू में, कि टच स्क्रीन फ़ोन का पहले आया, तो टच स्क्रीन फ़ोन किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, रेवोल्यूशनरी था। तो वैसे उस टाइप का कुछ उस लेवल का रेवोल्यूशनरी के किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो ऐसा कुछ काफ़ी मतलब इधर से नहीं दिखाया है हमें स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। अभी फिर स्मार्टफोन की बात हुई तो अभी फिर अभी IoT डिवाइसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे TWS हो गया, आपका नेक बैंड्स हो गए, और फिर आपके जो और भी ऐसे स्मार्ट वॉचेस एंड वियरेबल्स ये सब अभी काफ़ी आ रहे हैं जिससे इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो जैसे अभी एंड्रॉयड है और अपना एप्पल है, तो ऐसे एक नथिंग ने भी सोचा कि अपना भाई की इकोसिस्टम बना लिया जाए। तो नथिंग की तो एंट्री मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसे ही हुई है, और बाकी अभी ओवरऑल जो क्या चल रहा है मार्केट में या फिर क्या चल रहा है ओवरऑल इस इंडस्ट्री में अगर बात करें तो मैं पिछले 1 साल से फॉलो नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। मैंने आज वीडियो देखा कि किरण जी सर का, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है मतलब बात करने के लिए, मैं कैजुअली बात किया हूँ पूरा, इसीलिए काफ़ी मतलब साउंड कैशल करेगा और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में काफ़ी मतलब स्विचिंग जो कर रहा हूँ वो अनएक्सपेक्टेड होगी कि मतलब इस बारे में बात कर रहा था फिर इस पर चला गया। कैजुअल टॉक्स में जब बिना पेन पेपर के बैठते हैं तो ऐसा ही होता है। पेन पेपर के साथ बैठते हैं क्या होता है कि पेन और मतलब लिखा हुआ रहता है ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक का डिस्कशन करना है, ये टॉपिक का डिस्कशन करना है, तो वो एक फ्लो में जाते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें उतना कैजुअल नहीं हो पाते, मतलब उतना सही से हर चीज़ हम अपने ही लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है कि अरे भाई ये तो स्क्रिप्टेड टाइप लग रहा है, थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि कुछ पढ़ रहा है, तो इसीलिए कंप्लीट कैजुअल रखा है मैंने। तो हो सकेगा तो और एक कुछ बनाएंगे इसी चीज़ पे, बात करेंगे इस से रिलेटेड कुछ एपिसोड रखेंगे। तो अभी तो 20 मिनट हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी एंड करते हैं ये वाला एपिसोड। ओके सो लेट्स सी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन प्लीज़।